Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज बहुत ही सुंदर सा एक मैसेज हमें किंजल पटेल ने भेजा है मुंबई से। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग अपनी सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर संदेश हम तक पहुँचाते रहें, क्योंकि ये आपका मंच है, क्योंकि इस समस्या से समाधान की ओर का जो मंच है आपका मंच है, और यहीं से हम समाधान को प्राप्त करना चाहते हैं। और साथ ही परिवार है, तो जो भी बातें हमें लगती हैं कि घर में या समाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या परिवर्तन आना चाहिए, उस इस मंच से हम उस पर बहुत सुंदर चर्चा कर सकते हैं, विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो किंजल के इस सुंदर से संदेश को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो कहती हैं कि बेटी निकलती है तो कहते हो छोटे कपड़े पहनकर मत जाओ, पर बेटे से कभी नहीं कहते हो कि नजरों में गंदगी मत लाओ। बेटी से कहते हो कि कभी घर की इज्जत खराब मत करना, बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। हर वक्त रखते हो नजर बेटी के फोन पर ये भी तो देखो बेटा क्या करता है इंटरनेट पर। किसी लड़के से बात करते देखकर जो भाई हड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है। बेटा घूमे गर्लफ्रेंड के साथ तो कहते हो अरे बेटा बड़ा हो गया, बेटी अपने अगर दोस्त से भी बातें करे तो कहते हो बेशर्म हो गए। पहले शोषण घर में बंद करो, तब शिकायत करना समाज से। हर बेटे से कहो कि हर बेटी की इज्जत करे आज से। एक बहुत ही प्रेरक मैं कहूँगा या चिंतन करने योग्य पंक्तियाँ किंजल ने हमें भेजी है। थैंक यू किंजल आपके इस सुंदर संदेश के लिए, और इसी संदेश से ही आज के समाधान की मैं शुरुआत करना चाहूँगा प्राता जी के अभिनंदन के साथ। प्राता जी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है।
थैंक्स।
उनकी ओर से ये आवाज़ आई है, क्या कहेंगे इस पर?
बिल्कुल, दोनों को ही ठीक होना चाहिए, बेटी और बेटे, क्योंकि ये समाज एक से मिलकर नहीं बनता, ये एक समूह है। मैं बेटे और बेटियों की बात क्यों कहूँ, माता पिता को मैं तो कहना चाहूँगा वो भी अपनी दृष्टि को बिल्कुल स्वच्छ करें। परिधान से ही काम नहीं चलता, अपने विचारों का श्रृंगार, सुंदर विचारों का श्रृंगार करें, तो इससे एक सुंदर समाज की स्थापना होगी। कभी कभी हम वस्त्रों पे तो बहुत ध्यान देते हैं, पर मैंने गौर से देखा कि वस्त्रों से अधिक ध्यान देना चाहिए आंतरिक चिंतन पर। जिसके विचार सुंदर हैं, उसने कैसे भी वस्त्र पहने हो, किसी की भी बुरी दृष्टि उस पर नहीं जाएगी। और जिसके विचार मैले हैं, उसने सब कुछ अच्छा पहना हुआ हो तो भी उस पर दृष्टि जाएगी। इसलिए बात आंतरिक स्थिति की है। सभी मनुष्यों को अब इस प्योरिटी को अपने अंदर बढ़ाना है, ये भगवान की आज्ञा है। अपने नैनों को भी पवित्र करो, कानों को भी पवित्र करो, और ये सब कुछ जो हो रहा है इसको ऐसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। देखिए, कोई व्यक्ति लड़कियों को जिम्मेदार ठहरा देता है रेप के लिए, उसके विरुद्ध भी आवाज उठती है। कोई और कुछ कह देता है, उसके विरुद्ध भी आवाज उठती है। पर मैं यहाँ कहूँगा सभी दोषी हैं। केवल कपड़ों की बात नहीं है, आंतरिक स्थिति, काम वासना को सभी ने अपने अंदर संपूर्ण रूप से स्थान दे दिया है। आत्मा का मूल स्वरूप पवित्र है, उसको भुला दिया है। अब पुनः हम जितना परिधान पे ध्यान दिलाते हैं, जितना इंटरनेट और चीजों पे ध्यान दिलाते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए अपनी इनर प्योरिटी पर। देखिए, हमारे पास प्योरिटी है, हम इंटरनेट पर कभी गलत साइट में जाते ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे युवक हैं जिनके मन में प्योरिटी है, वो गलत चीजें देखते ही नहीं। बाजार में बहुत सारी गंदगी है, पोस्टर्स लगे हुए, होर्डिंग लगे हुए गंदगी के, जिनके मन में प्योरिटी वो उन्हें देखते ही नहीं। तो क्यों ना हम अपनी इनर प्योरिटी को बढ़ाएं, इनर पावर्स को बढ़ाएं, तो ये सब चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। और जब मनुष्य के अंदर प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, उसका परिधान ऑटोमेटिकली देवी देवताओं जैसा हो ही जाता है।
बिल्कुल, मतलब यहाँ पे भी आकर्षण का सिद्धांत ही काम कर रहा है कि मेरे अंदर जो है वही चीजें हम आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक जी, चलिए बात आती है कि सभी अपने अंदर की सुंदरता को, स्वच्छता को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएं, लेकिन जब सामान्यतः ये देखा जाता है, थोड़ी सी खिन्नता तो आ ही जाती है लड़कियों में कि बात बात पे हमें ही रोका जाता है, टोका जाता है, लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता। चलिए, पुरुष प्रधान समाज है, हम मानते हैं लड़कों की ओर थोड़ा सा कम ध्यान रहता है माता पिता, लड़कियों पे बार बार रोक टोक होती है, तो थोड़ी सी खिन्नता के भाव
नहीं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों को ही बदलना चाहिए। दोनों को ही अपने पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन नारी, नारी का मूल स्वभाव ही लज्जा होता है, तो उसको तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता ही है, क्योंकि एक लड़की कल माँ बनेगी और उसके बच्चे होंगे, और वो भी चाहेगी कि उसके बच्चे बहुत चरित्रवान हों, लड़के हों या लड़कियां। तो यहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए एक सुंदर चरित्र की। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि वस्त्र ठीक पहनना भी बहुत जरूरी है, विशेषकर हमारे भारत के समाज में। विदेशों की बात अलग है, वहां तो अलग ही बात है। अमेरिका में आप जाओ तो बहुत जगह आप देख भी नहीं सकेंगे, जा भी नहीं सकेंगे, सवेरे वॉकिंग पर भी नहीं जा सकेंगे, लेकिन हमारा भारत एक महान देश है, हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, सभी को बहुत ही रॉयल होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। विचारों की सुंदरता, वस्त्रों की श्रेष्ठता, ये सभी को अपनानी ही चाहिए।
जी जी जी, ठीक है ब्रता जी। वैसे विशेष करके एक चीज मेरे मन में आती है बार बार, कि जब कभी ये बात निकलती है तो थोड़ी सी, मतलब पेरेंट्स थोड़ी सी अपने लड़कियों के लिए विशेष करके ये ध्यान रखते हैं कि ठीक है, ज़्यादा कुछ सीमाएं ऐसी रखते हैं कि लड़कियां कई बार सोचती हैं कि शायद हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, हमें जैसे बाहर जाके जो कार्य करने हैं वो कार्य हम नहीं कर पाते।
देखिए, मैं इसमें बड़े ओपनली एक चीज और कहूंगा, जो केसेज मेरे पास लड़कियां खुद लेकर आती हैं कि उनके भिन्न भिन्न कारणों से किसी से भी उन्होंने लव मैरिज की, उनके भिन्न भिन्न परिधान से लड़कों में उनके लिए अट्रैक्शन हुआ, लक्ष्य तो उनका भी यही होता है, अट्रैक्शन से बुरी स्थिति हुई, चलो प्यार हुआ, शादी हो गई, 6 मास ही चली, 6 मास के बाद घर आ गई। अभी भी मुझे एक माँ अपनी लड़की को लेकर आई, 1 साल रही, वापिस घर आ गई। समाज वाले अब इस माँ को, बाप को कह रहे हैं, तुम इसको अपने घर में क्यों रखा, तुम इससे बात क्यों करते हो, इसको रिजेक्ट करो, इसको घर से निकाल दो, इसने हमारे समाज को बदनाम कर दिया है। देखिए वो स्थिति, अभी वो लड़की मेरे पास आई, मैंने कहा कैसा रहा तुम्हारा 1 साल, कि बस मैंने सब कुछ देख लिया, सीख लिया, अब मुझे पवित्र जीवन जीना है। तो देखिए एक चीज, इसकी स्थिति अच्छी थी, ये परेशान नहीं थी, लेकिन कुछ लड़कियां मेरे पास ऐसी भी आती हैं जो उस 6 मास के पीरियड में इतनी डिप्रेस और निगेटिव हो जाती हैं कि संसार बिल्कुल खराब है, इसमें कोई अपना नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं करना है, किसी को साथ नहीं देना, किसी से बात नहीं करनी है। मैं देखता हूँ कि उनकी सारी जो इमोशंस है ना, वो डेड हो जाती है। ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बुरी बात होती है, आम लोगों को पता नहीं है, पर इससे वो व्यक्ति निगेटिविटी की ओर चलता है, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की ओर चलता है। इसलिए मैं तो कहूँगा, लड़कियाँ सब हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, हमारे मन में तो सबके लिए प्यार है, हमारे मन में कोई भावना है नहीं। मैं लड़कियों को कहूंगा कि आप अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए अपने वर्तमान को बहुत श्रेष्ठ बनाओ, नहीं तो सिवाय पश्चाताप आपके कुछ भी नहीं रहता, न लड़के आपके साथ साथ देते, न आपके जीवन में आनंद रहता है। इसलिए अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए अपने वर्तमान जीवन को, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को प्योरिटी संपन्न बनाओ।
जी जी जी, चलिए ब्रता जी, हमारी भी शुभकामना तो हमेशा रहती है कि सबका जीवन बहुत श्रेष्ठ और सुंदर हो। चूंकि ये एक सुंदर सा मैसेज, मुझे लगा कि सच मुझे एक विचारणीय है,
नहीं, ये बहुत आज के दौर में ये रियली बहुत सुंदर था।
लोगों को, मतलब परिवार के लिए भी और माता पिता के लिए भी, कई बार बंदिशें शायद कहीं ज्यादा हो जाती हैं तो वो अपने आप को दबा कुचला सा महसूस करती हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। चलिए ब्रता जी, SMS आया है हमारे पास अपूर्वा जी का, ये कहती हैं कि मैं यज्ञ में अर्थात ब्रह्मा कुमारीज में अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ, इसका प्रोसीजर क्या है, मैं भ्राता जी से जानना चाहती हूँ।
देखिए, जिसको पवित्रता पसंद है, जी जी, जो भगवान को अपना जीवन ही देना चाहती है,
आपका आह्वान काम कर रहा
है, मैं इसको बिना जाने और देखे ही सच्चे मन से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी लड़कियां हमारे देश के लिए गर्व है, और यही आगे चलकर महान विदुषी बनकर, शेरनी शक्तियां बनकर भारत को महान बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। देखिए, हमारे पास जब लोग आते हैं तो यंग आयु की लड़कियों को सफेद परिधान में देखकर, साड़ियों में देखकर हैरान होते हैं कि आप इन्हें ले कैसे आए, वो हमें पूछते हैं। अरे, मैंने कहा, हम कहते हैं भाई हम नहीं लाए, वो खुद आई हैं, अपनी इच्छा से आई हैं, उनके अंदर प्योरिटी के बीज हैं, वो देवकुल की महान आत्माएं हैं, तो उनको आकर्षण हो रहा है प्योरिटी की ओर, वो संसार की इस गंदगी को देखना पसंद नहीं करती हैं, और ऐसे थोड़े लोग ही इस देश के लिए, संसार के कल्याण के लिए काफी होते हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया है, ये समर्पित होना चाहती हैं, मैं सभी भाई बहनों को बता दूं, ये समर्पणता भगवान पर समर्पणता है। भगवान ने ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये भगवान के द्वारा रचा हुआ एक विशाल यज्ञ है। इसमें हम जैसे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी बहने अपने जीवन को समर्पित कर चुकी हैं, जो पवित्रता का व्रत ले चुकी हैं। मैंने पीछे भी सुनाया था कि स्वामी रामदेव ने ऐसे लड़के लड़कियों का आह्वान किया है, गुरुकुल खोला है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो देश के लिए समर्पित होंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे यहाँ तो बाबा ने ये काम अब से 79 ईयर्स पहले ही कर दिया था, तो बहुत सारे लोग आए। और हम भी आह्वान करते हैं कि वो युवक जो प्योरिटी को अपनाना चाहते हैं, वो युवक जो देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वो युवक जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अब आ जाइए और प्योरिटी अपनाकर, योगी बनकर विश्व का कल्याण कीजिए। तो इस लड़की ने भी, इस कन्या ने, पवित्र कन्या ने अपने जीवन को प्रभु पर अर्पित करने की इच्छा जाहिर की है। अवश्य भक्ति काल में यह आत्मा भगवान को कहती आई होगी कि हे प्रभु, जब आप इस धरा पर आओगे, मैं अपना सर्वस्व बलिहार कर दूंगी। वो संस्कार उसमें इमर्ज हो गए हैं। तो वेलकम है ऐसी कन्याओं का। और प्रोसीजर यही है कि जिस सेवा केंद्र पर ये संबंध है, वहां से हमारे यहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, कन्याओं की ट्रेनिंग होती है, उस कन्याओं की ट्रेनिंग में ये शामिल हो। हर साल वो होती है, अभी मई जून में फिर से है। और यहाँ से उनकी योग्यताओं को देखकर, उनके संस्कारों को देखकर उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, और फिर वो इस ईश्वरीय सेवा में लग जाती हैं। बस यही शुरुआत इसी तरह करेंगी। और जैसा मैंने कहा, जिनके अंदर प्योरिटी के बीज हैं और श्रेष्ठ संकल्प है कि मुझे ईश्वरीय कार्य ही करना है, वो अपने समर्पित जीवन में संपूर्ण सफल होती हैं। बहुत भाग्यवान है ये कन्या, और भगवान को ऐसी कन्याओं से बहुत प्यार रहता है। भगवान, मैं तो कहूंगा, जैसे मैंने देखा है, भगवान ऐसी कन्याओं पे कुर्बान रहता है।
तो मतलब भ्राता जी, पहले ये सेवा केंद्र पे जाएं, वहाँ जो बहनें रहती हैं उनसे मिलें, और उसके पश्चात उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। एक हमारे पास ऐसा ही एक मेल आया था भ्राता जी, अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अब मैं ये चाहती हूँ, मुझे भी ये कार्य अच्छा लगता है, पवित्रता की जैसी बात आप हमेशा कहते हैं वो मुझे अच्छी लगती है, मैं भी संसार की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ के लिए राजी नहीं है। तो क्या यहाँ माता पिता की अनुमति यदि नहीं है तो भी वो इस कार्य में लग सकती हैं, या उनकी अनुमति लेकर के ही इस कार्य में लगा जा सकता है?
क्योंकि वो अपने एक सुंदर जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं, तो माँ बाप की गुड ब्लेसिंग्स लेना बहुत ही आवश्यक होता है। उनकी सहमति से जब कोई कन्या इस कार्य में अपने जीवन को समर्पित करती है, तो उनकी दुआएं इसके साथ रहती हैं। और माँ बाप को मैं कहूँगा कि आपकी पवित्र कन्या यदि श्रेष्ठ जीवन बनाना चाहती है और विश्व सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना चाहती है, तो ऐसे माँ बाप को भी अपनी कन्या को सहयोग देना चाहिए। देखिए, दूसरी तरह की कन्या जो किसी पूछती नहीं, माँ बाप से पूछती नहीं, कहीं भी जाके लव मैरिज कर लेती हैं, फिर परेशान होती हैं। लेकिन शिव बाबा ने यहाँ पर ये नियम बनाया कि बच्चियाँ अपने माँ बाप की स्वीकृति जरूर लें। अगर उसकी आयु बड़ी हो गई है, मान लो 25 साल की हो गई है, हम जानते हैं कानूनन वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी वो माँ बाप को सहमत करे। मेरा कहने का लक्ष्य ये है कि ब्लेसिंग्स अपने बड़ों की जीवन की सफलता के लिए परम आवश्यक होती है।
बिल्कुल, मतलब उनकी अनुमति, उनका आशीर्वाद लेकर के ही आए। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की या परिवार वालों की चाहना अलग होती है बेटा जी, क्योंकि ये जो लाइफ है, ये लगता है कि ये तो संतों वाली लाइफ हो गई, ये तो मतलब एक प्रकार से समाज से हटी हुई एक प्रकार की लाइफ हो गई, और पता नहीं बिटिया वैसी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। और उनकी चाहना होती है कि घर गृहस्थ में रहे, हम हंसते खेलते उसको देखें, उनके बच्चों के साथ भी हम खेलें, तो ऐसी वाली कामना रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पे उनकी ऐसी प्रबल कामना है, तनिक भी इच्छा नहीं है, लेकिन इनकी ऐसी इच्छा है कि नहीं, मुझे तो पवित्र जीवन बनाना है, तो ऐसे में क्या सजेस्ट
करें? तभी इन्हें अपना मार्ग स्वतः ही चुन लेना चाहिए और अपने को ऐसा दृढ़ कर लेना चाहिए, अपनी दृढ़ता से ही अपने माँ बाप को कन्विंस अवश्य कर ले, भले ही वो सहमति न भी दे, लेकिन ये उन्हें कन्विंस करे। और फिर क्योंकि आयु बड़ी है तो वो स्वतंत्र होती है अपना मार्ग चुनने के लिए, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती।
बिल्कुल। तो क्या प्रताप जी, समर्पित होने के बाद पूरी तरह उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी की हो जाती है या उन्हें आते समय कुछ ऐसी अपनी व्यवस्था करके आना होता है?
देखिए, थोड़ी सी अपनी व्यवस्था करनी होती है, बाकी जब वो जीवन समर्पित कर देती है तो इस महान यज्ञ को ही उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, यज्ञ उनके लिए जिम्मेदार रहता है। और यहाँ ये भी है कि ऐसे जब भाई बहने समर्पित होते हैं उनका कोई बहुत ज्यादा खर्च तो होता भी नहीं। देखिए, रहने को सेवा केंद्र होता है, खाना पीना और वस्त्र सिंपल, वो भी सफ़ेद साड़ियाँ पहननी होती हैं तो उसमें कुछ लंबे चौड़े खर्च की ज़्यादा जरूरत भी नहीं रहती।
बिल्कुल, तो ट्रेनिंग करके बता जी, क्या केवल भारतवर्ष में किसी स्थान विशेष की बात होती है या उनकी इच्छा हो कि हम विदेश में भी जाकर की सेवाएं करें तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि हाँ, जो जहां जाना चाहता है, जहां सेवा करना चाहता है वो सेवा करें?
आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है और यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी कन्याएं आती हैं जो जिस सेवा केंद्र से आई है उसी सेवा केंद्र पर पुनः जाना चाहती हैं। उनकी टीचर बहनें भी लिख देती हैं कि हमें इनकी ज़रूरत है, तो उनको वहाँ भेज दिया जाता है। और कुछ ऐसी कन्याएं भी होती हैं, जैसे आपने कहा, वो विदेशों में जाके सेवा करना चाहती हैं, तो उनके लिए वो मार्ग भी खुला रहता है, उनकी योग्यताएं देखकर उनको वहां भी भेज दिया जाता है।
बिल्कुल, मतलब उनके लिए हर प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है और योग्यताएं देख करके जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है वो कर दिया जाता है। एक चीज़ देखा गया है व्रता जी, कलयुग है तो जैसे विकार तो हर एक के अंदर है, तो यदि मान लीजिए किसी ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, अब उसे लगता है कि ये मार्ग कठिन है, क्योंकि वैसे भी कठिन तो साधना का मार्ग होता ही है और ये सुंदर और श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन हो सकता है कि मेरे मनोविकार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो क्या यहाँ आने के पश्चात यदि कोई संसार में जाना चाहता है तो वो मार्ग भी खुला रहता है या वो मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाता है?
ऐसा होता है, यहाँ पहले उनको 5-6 साल ट्रायल बेसिस पे रखा जाता है कि वो सब कुछ देख लें, उन्हें बहनों के साथ भी रहना है, उन्हें सेवाओं में भी रहना है, उन्हें सवेरे भी उठना है, उन्हें खान पान भी सात्विक खाना है। तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि साधनाओं का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। तो कई लोग इसमें अपने को शुरू में तो उमंग होती है, लेकिन धीरे धीरे चल के उन्हें संसार का आकर्षण भी होने लगता है। मान लो कोई किसी बड़े घर से आई है जहाँ उसको बहुत सुख सुविधाएं थी, अब यहाँ सुख सुविधाएं नहीं है, त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा। सभी नहीं, 5% कन्याएं ऐसा चाहती हैं कि वो इस जीवन को छोड़ के वापिस अपने जीवन में जाएं। तो 5 साल उनके लिए ट्रायल का पीरियड होता है, इसमें वो स्वतंत्र हैं, वो जाना चाहें तो जा सकती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से कोई दबाव नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है व्रता जी कि जब एक बार हम आ गए तो अब यहाँ के ही नियम मर्यादाओं में ऐसे ही रहना है, तो कई बार कईयों को घुटन सी महसूस हो सकती है, क्योंकि कलयुग है जैसा मैंने कहा, तो हो सकता है मन के विकार कई बार प्रबल हो, तो बाहर जाने का या फिर संसार में यदि वापस जाना चाहें तो ऐसी स्वतंत्रता भी है।
नो डाउट, ये त्याग तपस्या का जीवन प्रेशर से जिया नहीं जा सकता
जी।
बिल्कुल सीधी सी बात है, प्रेशर कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने कहा 5 साल, किसी के लिए 8 साल भी ट्रायल के रहते हैं कि वो अगर जाना चाहे तो आराम से जा सकता है, इसमें उनको भी कोई दिक्कत नहीं और जिस सेवा केंद्र पे वो रहती है उनको भी कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है 5 साल ट्रायल पीरियड है।
क्या अब हमारे जो भाई हैं, यूथ हैं, जो वो भी चाहते हैं कि हम भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह निकल पड़े, समाज का कल्याण करें, देश का कुछ करें, तो क्या उनके लिए भी व्यवस्था है कि वो भी यहाँ आकर के समर्पित हो सकते
हैं? बिल्कुल, हमारे सेवा केंद्रों में भी कई बड़े से सेवा केंद्र बन चुके हैं जहाँ कई कई भाई रहते हैं, 2, 4, 5, 8, 10 और रिट्रीट सेंटर बने हैं वहाँ 100-100, 200-200, तो ये सब के लिए एक ओपन चांस रहता है। लेकिन उनकी योग्यताएं देख कर, उनके अंदर की भावनाएं देख कर, उनमें त्याग और तपस्या की कितनी लगन है, ये सब देखकर किया जाता है।
बिल्कुल, मतलब ये सारी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। उसके पश्चात ही उन्हें समर्पित,
क्योंकि कभी ऐसा होता है एक व्यक्ति आता है वो संसार से दुखी है, सोचता है अरे यहाँ इस दुख में क्या करना है, चलो वहां जाके सेवा करेंगे, ये भी एक तरीका होता है, लोगों को इच्छा होती है हम समर्पित हो जाएं। लेकिन ये वैराग्य ज्ञान युक्त वैराग्य नहीं होता है, जो जल्दी राग में बदल जाता है। फिर उसे कोई साथी मिल गया कि अरे चल मेरे यहाँ बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और तुम्हें 30,000 रुपए मास दूंगा, वो कहेगा छोड़ो इसको मैं तो चला। ये वैराग्य मन उसके लिए समुचित वैराग्य नहीं है। इसलिए विवेकपूर्ण वैराग्य जिसके अंदर उठता है वही समर्पित जीवन में सफल होता है और सभी के लिए ये मार्ग खुला रहता है।
बिल्कुल, मतलब सभी को एक ओपन इन्विटेशन है कि जो चाहे अपने जीवन को समर्पित कर सकता है। अच्छा प्रताप जी, जो घरों में है, गृहस्थ में है, अब वो लोग भी क्या अपने मन में ऐसा भाव रख सकते हैं, क्योंकि अब चलिए मेरा व्यापार है, घर परिवार है, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी प्रभु पे अर्पित तो हो जाऊँ, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं, तो लगता है कि जिम्मेवारियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहां रहते हुए क्या ये भाव रखा जा सकता है?
ये भाव ही इम्पोर्टेंट है कि मेरा सब कुछ प्रभु अर्पण, तन मन धन परिवार मकान दुकान बिजनेस सब तुमको अर्पित, हम जस्ट ट्रस्टी बनकर इस कार्य को संभालेंगे, ये हमारे बच्चे नहीं ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये मेरा बिजनेस नहीं ये तुम्हारा बिजनेस है, यू आर रेस्पॉन्सिबल, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। इस फीलिंग से अगर मनुष्य जीता है तो ग्रस्त में रहते हैं, कार्य करते भी वो समर्पित जीवन जी सकता है।
बिल्कुल, आपने एक लंबा समय व्रता जी समर्पित रूप से बिताया है, अब भी आपका जीवन सबके लिए आदर्श है। जो ऐसे समर्पित हो जाते हैं, केवल ब्रह्म कुमारी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे व्यक्ति अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर देता है समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। तो ये सब हमारा जो समर्पित जीवन है वो पूरी तरह सफल हो, हम संपूर्ण आनंद लें, उसके लिए कुछ सूत्र बताना चाहें।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है और ये बहुत ही जरूरी है कि जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया माना अब कुछ नहीं और, तो उसको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए वो सब चीजें अवश्य कर लेनी चाहिए जो आवश्यक हैं। तो पहली चीज यहाँ पर ज्ञान योग धारणा और ईश्वरीय सेवा, ये चार सब्जेक्ट हैं। समर्पित होने के बाद हर व्यक्ति सेवा में लग जाता है, एक सब्जेक्ट उसका वहाँ मिल जाता है उसे, लेकिन सेवाओं में भी वो निर्विघ्न रहे, वो टकराव से मुक्त रहे, उसकी भाषा उसका व्यवहार बहुत रॉयल रहे, इसकी परम आवश्यकता होती है। नहीं तो लोग सेवाओं के फील्ड में असफल हो जाते हैं, स्वभाव अच्छा नहीं, बोलने की ज़्यादा आदत है
जी।
उसको लोग पसंद नहीं करते, कोई दूसरों से घृणा करता है, काम ठीक नहीं करता, उसे साथी पसंद नहीं करेंगे, वो कहेगा जाओ भाई हमें नहीं चाहिए, तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे ही योग अभ्यास अमृत वेले होता है, ईश्वरीय महावाक्य हम सुनते हैं सवेरे शाम को, योग अभ्यास होता है, दिन में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम मिलते हैं, उस सब में परफेक्टली फॉलो करना, ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, अच्छा योग अभ्यास, उससे आती हैं फिर अच्छी धारणाएं। समर्पित जीवन में जितनी सुंदर धारणाएं होंगी, त्याग और तपस्या से भरा जीवन होगा, उतना ही ये सफल होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन समर्पित करके कि भाई अब तो खाना भी अच्छा मिलेगा, पहनने को भी अच्छा मिलेगा, अच्छी तरह रह रहे हैं, और वो अलबेला हो जाए, केयरलेस हो जाए, तो उसको भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए जो लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं उन्हें बार बार स्वचिंतन करना चाहिए, हमने जीवन समर्पित कर दिया, सर्वस्व दे दिया, अब हमें सर्वस्व प्राप्त कर लेना है। प्राप्ति होगी स्वयं सर्वशक्तिवान से, परम सदगुरु से। अगर समर्पित होकर भी अपने जीवन को वैल्यू न दी, अपने समय को वैल्यू न दी और प्राप्तियों के पीछे हम लग न गए, तो हमारा त्याग हमारी समर्पणता निष्फल जाएगी, और ऐसे में एक समय आने पर मनुष्य को एक सटिल डिप्रेशन होता है कि मैंने सब कुछ छोड़ भी दिया लेकिन इधर मैंने कुछ पाया नहीं, मेरा जीवन आनंदित नहीं हुआ। इसलिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होकर इन चारों सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए, केवल सेवा सेवा नहीं, तो मनुष्य हर फील्ड में सफल होगा और उसे सफलता का ऐसा वरदान मिल जाएगा जो जन्म जन्म उसके साथ चलेगा।
बिल्कुल, मतलब अपने लक्ष्य को शायद नहीं भूलना चाहिए कि मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, और वो लक्ष्य शायद उन्हें प्रेरित करता रहेगा। तो कई बार ऐसा नहीं लगता रहता जी कि व्यक्ति एक ही कार्य करते करते मोनोटोनस जैसी स्थिति हो जाती है कि अरे क्या यही लगातार करते करते रहना है, तो वो शायद नवीनता का भाव नहीं आ पाता, तो वो शायद निरस्ता आ जाता है।
देखिए हर एक के ऊपर है, हमारे यहाँ कईयों का बहुत क्रिएटिव माइंड है, वो नई नई चीजें क्रिएट करते हैं, क्योंकि समर्पित होने का अर्थ केवल ये नहीं कि हमें फिर दूसरों के डायरेक्शन फॉलो ही करना है, हमें बहुत कुछ करना होता है, हम नई चीजें क्रिएट करेंगे, हम अपने टैलेंट्स को यूज करेंगे, हम सबको अपना बना सकते हैं उसमें, और बहुत अच्छी अच्छी चीज सीख सकते हैं। योग अभ्यास भी बहुत अच्छा करके हम बिल्कुल एक डिवाइन एक्सपीरियंसेस से अपने जीवन को भर सकते हैं, तो फिर न बोरियत होगी न कोई और फीलिंग होगी, और हमें संपूर्ण रूप से आत्मसंतोष मिलेगा, अंदर से आवाज आएगी कि हमने जीवन समर्पित करके एक बुद्धिमानी का काम किया है।
बिल्कुल, कभी ये बंधन जैसा तो नहीं लगता रहता जी,
थोड़े लोगों को लग जाता है,
जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं मान लीजिए।
वैसे तो किसी को बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ लोग बंधन महसूस करते हैं, उनके अंदर अतृप्त अगर कोई इच्छाएं रह गई हैं, उसे पूर्ण करने के लिए आत्मा लालायित होती है। तो ऐसे थोड़े से केस होते जरूर हैं ये, जिसमें व्यक्ति बंधन महसूस करता है, वो चाहता है फिर से मैं उधर जाके ये सब काम करूं, लेकिन जब ईश्वरीय मार्ग पर चलकर किसी ने अपने जीवन को समर्पित किया है तो उसको ईश्वरीय मर्यादाओं की सीमा में तो रहना ही होता है, इसी में उसका कल्याण है। इसलिए अधिक लोग, मैं कहूंगा 95% से ज्यादा लोग इस जीवन को एंजॉय करते हैं।
चलिए, तो बहुत सुंदर बात है प्रथा जी कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद एंजॉय करेगा तभी दूसरों को वो एंजॉयमेंट दे पाएगा और सभी इस मार्ग पे आकर के सुंदर अनुभव को करें, ऐसी हमारी भी कामना रहेगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए प्रथा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, समर्पणता की बात चल रही थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि समर्पणता एक बहुत बड़ा गुण है। जब तक पत्थर खुद को समर्पित नहीं कर देता किसी मूर्तिकार के सामने, तब तक एक सुंदर मूर्ति का निर्माण नहीं होता, या फिर जब तक मिट्टी अपने आप को कुंभकार के सम्मुख समर्पित नहीं कर देती तब तक एक सुंदर मटके या सुराही का निर्माण नहीं होता। तो समर्पणता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम नहीं होते किसी लक्ष्य के लिए समर्पित, किसी ध्येय के लिए समर्पित या परमात्मा के आगे समर्पित, तब तक जीवन में वो खुशहाली, वो आनंद प्राप्त नहीं हो पाता, या हम जिसे अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। और जहाँ शुरुआत हमने की थी कि सचमुच लड़कियों की बात हमारी चल रही थी, तो कई बार बहुत ही प्रेरक बात ये हो जाती है, चिंतनीय बात हो जाती है कि हम लड़कों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लड़कियों को नहीं देते। माता पिता को भी ये ध्यान रखना चाहिए, समाज में भी ये समानता अवश्य स्थापित होनी चाहिए, ताकि उन्हें कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि हमें दबाया जा रहा है, हमें पर्दे के अंदर रखा जा रहा है। भले वो अंदर रहें, लेकिन फिर भी उन्हें वो सारी चीज़ें, वो सारी सहूलियतें हम दें, और कहीं भी इस मानसिकता में ना धकेलें कि नहीं, तुम दूसरे स्तर की हो, ये स्थिति ना हो, तभी समाज में एक समानता आएगी, तभी उनका भी संपूर्ण विकास होगा, तभी संसार में, समाज में खुशहाली आ पाएगी। तो दोनों बातों पे मित्रों बहुत विस्तार से और गहराई से विचार कीजिएगा, हम भी अपने आप को समर्पणता की ओर बढ़ा सकते हैं, और साथ ही सामाजिक समानता पे भी हम सबका बहुत सुंदर चिंतन होना चाहिए और हमें आगे बढ़ के इसके लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए, ताकि किसी के भी मन में खिन्नता ना रहे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।